पृष्ठ संख्या 84। इस संबंध में दो बातें ध्यान देने की है। एक तो यह कि अब तक हिंदी नाटक जहां पर खत्म हुआ करते थे, राकेश ने वहां से नाटक शुरू किया था। सावित्री बहुत भोग चुकी है, उन तीखे अनुभवों के बाद उसकी सहजता समाप्त हो चुकी है और नाटक एक तल्खी, कड़वाहट और चिड़चिड़ेपन के साथ शुरू होता है। अंत तक वैसा ही चलता है। मुझे तो उसके स्वभाव का यही रूप अधिक स्वाभाविक परिस्थितियों की देन जैसा लगता है। भावना और आत्मीय संबंध उसके लिए मिट चुके हैं। इस नाटक की रिहर्सल के दौरान का एक संकेत सुधा शिवपुरी ने दिया है कि वह ब्रैकेट में राकेश जी ब्रैकेट क्लोज उस औरत को भावुक बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे। कहते थे बहुत भोगा है उस औरत ने, उसके घुटन और कड़ुआहट उसकी जिंदगी से उभर कर आनी चाहिए। इससे लेखक की दृष्टि का परिचय मिल जाता है। यह दूसरी बात है कि सावित्री के चरित्र निर्वाह में उसके पूरे यथार्थ चित्रण में उसे सफलता न मिली हो, क्योंकि यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि सावित्री के प्रति लेखक की गहरी सहानुभूति होते हुए भी नाटक में दोषी भी वही लगती है। यह दोष केवल उसका क्यों? क्या परिवेश की जड़ता और मानसिक हताशा के लिए सभी समान रूप से उत्तरदायी नहीं है? सावित्री पत्नी स्त्री एक ही व्यक्ति क्यों? यही स्थिति महेंद्रनाथ के साथ भी है। यूं तो सावित्री के आगे उसका चरित्र नितांत गौण है, लेकिन फिर भी नाटक का वह मुख्य पात्र है। उसके व्यक्तित्व का मनोविज्ञान भी बहुत स्पष्ट नहीं है। शुरू में वह बड़ा दब्बू लगता है, पत्नी के पुरुष मित्रों से चिढ़ा हुआ, जुनेजा पर निर्भर, बेकार होने के कारण घर में उसकी स्थिति दयनीय है। शुरू में पत्नी के आगे डरा डरा अपराधी और घर के काम के लिए तैयार लगता है। एक उदाहरण, एक पुरुष ब्रैकेट में गुस्से से उठता ब्रैकेट क्लोज, तुम तो ऐसे बात करती हो जैसे। स्त्री, खड़े क्यों हो गए? पुरुष एक, क्यों मैं खड़ा नहीं हो सकता? स्त्री ब्रैकेट में डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज, हो तो सकते हो कॉमा, पर घर के अंदर ही। पुरुष एक, मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए हैं अपने पर इस अखबार के। पत्नी के साथ साथ बच्चों से भी वह उपेक्षित ही है। केवल अशोक की सहानुभूति उसे मिलती है, लेकिन रह रह कर उसका पुरुषोचित आत्मसम्मान भी जागने लगता है। यह सब सही है, पर उसका दब्बू और दरिंदा बन जाने वाला रूप नाटकीय स्थितियों से कहीं उभरता नहीं, केवल अंत में सावित्री के संवादों से जाहिर होता है, जो बहुत उचित तरीका नहीं है। इसके अलावा सावित्री उसकी जो तस्वीर खींचती है, वह एक लिज लिजे और क्रूर आदमी की है, जो नफरत और वितृष्णा पैदा करती है। पृष्ठ संख्या 85। दूसरी ओर जुनेजा के लिए वह हर आदमी जैसा एक आदमी है। उसकी बातें महेंद्र के प्रति सहानुभूति पैदा करती है। दोनों बातों में संगति नहीं लगती और महेंद्र भी टुकड़ों में बटा हुआ लगता है। यह भी खटकता है कि दूसरे उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्वयं वही अपना कोई स्पष्ट चित्र पाठक दर्शक के सामने नहीं ला पा रहा है। जैसा कि पहले भी कहा है कि उसकी कुढ़न चिढ़ सावित्री से क्यों है? क्या वह उसके पर पुरुषों से गलत संबंध मानने के कारण, या सिर्फ आत्मसम्मान कुचला जाने के कारण कि कभी वह गृह स्वामी था, आज घर में उपेक्षित, तिरस्कृत है, आश्रित है? निसंदेह नाटककार ने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है और नाटकीय अर्थ और चरित्र के यथार्थ की दृष्टि से यह एक अहम सवाल है जिसके लिए सावधानी की जरूरत थी। दो पात्र और हैं, जुनेजा सिंघानिया, जिनके संबंध में भी विरोधात्मक स्थिति आती है। नाटक शुरू से यह संकेत करता चलता है कि जुनेजा एक व्यावसायिक दृष्टि वाला स्वार्थी मनोवृत्ति है का कोई दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन नाटक के अंत में सावित्री और बिन्नी से बातचीत के दौरान वह बड़ा सुसंस्कृत, समझदार महेंद्र का सा सच्चा दोस्त और उसकी भलाई के लिए प्रयत्न करता हुआ एक भला आदमी लगता है। सिंघानिया में यद्यपि उस वर्ग की बनावट अहिंसा, मूल्यों, देशहित और आदर्श को बड़ी बड़ी बातें, बड़े इरादे, अज्ञानता को ऊपरी बातों से छिपाने की कोशिश, यह सब दिखाया गया है उसके संवादों से, तौर तरीके से, लेकिन सचमुच उस समय की स्थिति में, नाटकीय वातावरण में उसे कुछ अतिरिक्त समय और उसके व्यक्तित्व को अधिक महत्व दिया गया लगता है, और वह नाटक से, पात्रों से अलग अपने में एक पूरा अभिनय हो जाता है। इसीलिए समीक्षकों ने उसे कैरिकेचर की संज्ञा दी है। यह कुछ कारण है जो आधे अधूरे के चरित्रों को पूर्ण नहीं बनने देते और नाटक की समग्र अनवति में बाधक होते हैं। इसलिए नेमिचंद्र जैन की यह बात गलत नहीं है कि आधे अधूरे के चरित्रों की परिकल्पना में बहुत सूक्ष्मता या सफाई या सृजनात्मक कल्पनाशीलता कम है। संग्रह वृत्ति बहुत लगती है। स्वभाव और व्यवहार की कई प्रकार की विशेषताएं एक ही चरित्र में एक साथ इकट्ठी कर दी गई हैं, जो अलग-अलग दिलचस्प होकर भी रचना की दृष्टि से एक दूसरे को काटती और तोड़ती हैं। निश्चय ही इस माने में उनके पहले दोनों नाटकों की चरित्र सृष्टि ज्यादा सार्थक और सफल है। अगर हम ब्रिजमोहन शाह की बात भी मान लें कि चूंकि सावित्री ही नाटक का केंद्र है, इसीलिए सावित्री की भावनाओं और उसके घर और बाहर के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में अन्य चरित्रों का सही मूल्यांकन हो सकता है, तो भी ऊपर कही गई सारी बातें और पात्रों के अंतर विरोध अपनी जगह रहते हैं, जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। वैसे इस नाटक के हर चरित्र का अंतर्द्वंद बड़ा तीखा है। संदर्भ 1, नटरंग 21, पृष्ठ संख्या 40। 2, नटरंग संयुक्तांक 10 से 11, कॉमा पृष्ठ संख्या 53। पृष्ठ संख्या 86। हर पात्र अंदर से हारा हुआ और अंदर बाहर दोनों से उलझता हुआ, इसीलिए ये चरित्र आरंभ से अंत तक एक से हैं। उनमें परिवर्तन या विकास नहीं है और वे आज की मानवीय स्थिति को ब्रैकेट में सीमित अर्थों में ही सही, ब्रैकेट क्लोज, प्रस्तुत करते हैं। ये त्रस्त और पस्त चरित्र भले ही विकासहीन और घटना रहित हैं, फिर भी नाटक कथानक और संगठन से बढ़िया है, क्योंकि उसमें पकड़ है, अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए आवाहन है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि कथानक से ज्यादा चरित्र राकेश के नाटकों में प्रधान है। कथानक उनके अनुसार चलता है, उन्हीं के द्वंद से कथानक का ताना बाना बुनता चलता है। वे कथानक के अनुसार अपने को नहीं ढालते, वे नाटक के मूल तथ्य को उभारते हैं और जीवंत रूप में अपने को स्थापित करते हैं। चरित्र सृष्टि की दृष्टि के राकेश कहीं कहीं बड़ी सूझबूझ से काम लेते हैं। नाटक में यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि बिन्नी और किन्नी दोनों सावित्री के व्यक्तित्व का ही भाग हैं, उसी का स्पष्टीकरण है। बिन्नी के वैवाहिक संबंध की असफलता, मानसिक असंतोष और किन्नी का झगड़ालू विद्रोही स्वभाव उसी के व्यक्तित्व का अंग है। इसी तरह अशोक की बेकारी और माँ के प्रति क्रोध, चिढ़, घर से भाग जाने की इच्छा महेंद्र की जिंदगी की ही पुनरावृत्ति है। सावित्री के पुरुष मित्रों का सामना महेंद्र भी नहीं करता। अशोक भी उस स्थिति से बचना चाहता है और अंत में जगमोहन के सामने पड़ता भी नहीं। सावित्री पर भी महेंद्र का वश नहीं, अशोक का भी। महेंद्र भी चाहता है कि इससे तो सावित्री अपना अलग संसार बसा लेती, पर कह नहीं पाता। अशोक कह देता है। व्यक्ति के मन की परतों को खोलने का यह प्रयोग राकेश ने तीनों नाटकों में किया है, जो नाटकीय दृष्टि से भी उपयोगी है। नाटक का अंत भी वाद विवाद का विषय है। एक तो लेखक के परिवेश की जड़ता और मानसिक हताशा के लिए सारा दोष पत्नी को दिया है, दूसरे महेंद्र घर से जाकर हमेशा की तरह फिर छड़ी संभाल कर वापस लौट आता है। सावित्री भी जगमोहन के साथ नए जीवन का आरंभ करने की इच्छा से निकलने के बाद हार कर फिर घर लौट आती है और हताश स्थिति में जैसे मौजूदा परिस्थिति को स्वीकार कर लेती है। बौद्धिक वर्ग को यह अंत कुछ नाटकीयता और भावुकता के लिए हुए लगता है। नाटक का अंत पात्रों को विशिष्ट बना देता है। नाटक को स्त्री की रुग्ण निंदा और स्त्री द्वेष बनाकर छोड़ देता है। भारतीय समाज का बोध उससे नहीं होता और न सामान्य बुद्धि से सोचने पर ही ठीक लगता है कि स्थितियों का दायित्व एक ही पर हो। इस अंत से केवल यह लगता है कि जैसे महत्वाकांक्षी और गलत कदम उठाने वाली स्त्री ने एक परिवार को नष्ट कर दिया हो। यह अंत ही नाटक को मध्यवर्गीय परिवार तक सीमित करके छोड़ देता है, क्योंकि पूरे नाटक में ब्रैकेट में अंत को छोड़कर ब्रैकेट क्लोज सावित्री का द्वंद्व संघर्ष सही रूप से उभरा है। इसीलिए नाटककार की ही यह असावधानी कही जा सकती है कि उसने व्यापक नाटकीय अनुभव को अंत में जाकर सीमित कर दिया है और इस तरह की प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया कि इनमें न तो कोई भविष्य का संकेत है, न मुक्ति की संभावना, न जीवन के लिए प्रेरणाएं, जिनका बिना ट्रेजेडी मात्र मेलोड्रामा होकर रह गई और मेलोड्रामा की भी रचना नहीं कर पाया, क्योंकि बीच में कहीं उसमें समग्र दर्शकों की वर्तमान जिंदगी की सामाजिक विश्व दृष्टि का कथन नहीं हो पाता है। संदर्भ एक, वही ब्रिजमोहन शाह, पृष्ठ संख्या 54। पृष्ठ संख्या 87। यद्यपि राकेश लेखकीय दृष्टि से यह मानते हैं कि सामान्य से हटकर एक विशिष्ट व्यक्तिगत विश्व की अनुभूतियों से उस प्रभाव की ब्रैकेट में व्यापक और स्थायी प्रभाव की ब्रैकेट क्लोज सृष्टि संभव नहीं, लेकिन जीवन और यथार्थ के बहुत निकट होते हुए स्वयं आधे अधूरे की पहुंच बहुत व्यापक नहीं। अपने एक निबंध में राकेश ने कहा है, साहित्य और अन्य कलाकृतियां हमें अपने को समझने में सहायता देती हैं। उनके माध्यम से अपने को देखकर हमारी अपने से पहचान घनिष्ठ होती है। इस पहचान को बढ़ाने में जो कलाकृति जितनी सहायक है, उसे उतनी ही महान कहा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि कलाकार की दृष्टि से यथार्थ के पूरे पट को देख सकती हो। हर कृति में उस पूरे पट को अंकित करना न तो संभव है और न वांछनीय ही, परंतु कलाकार के अंतर में उस पूरी पृष्ठभूमि की चेतना का होना आवश्यक है। आधे अधूरे नाट्य कृति हमारी अपने से पहचान तो कराती है, इस पहचान को बढ़ाने में सहायक नहीं होती। वह जीवन की वास्तविकता से परिचित तो कराती है, लेकिन उससे झुंझलाहट पैदा नहीं करती, भविष्य के प्रति सचेत नहीं करती, बल्कि कुछ खास स्थितियों में ब्रैकेट में विशेषकर आर्थिक स्थितियों में ब्रैकेट क्लोज, मात्र व्यवहार का ब्रैकेट में विशिष्ट मनुष्यों का ब्रैकेट क्लोज वर्णन करने वाली रचना हो जाती है और स्थायी प्रभाव नहीं डालती। लगता है मुख्य बात लोगों का एक दूसरे को बहुत कम जानना और उनका अधूरापन ही लेखक के मस्तिष्क में है और नाटक की संरचना में उसी को ध्यान में रखा गया है। परिणामतः पात्रों और स्थितियों का सही और पूरा निर्वाह नहीं हो पाया। गतिशील यथार्थ की बात और उस यथार्थ तक अपने अनुभव की परिधि को फैलाने की बात राकेश ने प्रायः कही है, वह आधे अधूरे में क्यों नहीं है। अज्ञेय पर लिखते हुए भी उन्होंने कहा है कि बातों को साइड ट्रैक करके निकल जाने में निपुणता तो है, परंतु इंटेग्रिटी की मांग क्या यह नहीं कि सीधे प्रश्न पर सीधे ढंग से ही विचार प्रस्तुत किए जाएं। आधे अधूरे में सीधे प्रश्न को अंत में आकर एक गलत मोड़ दे दिया है, क्योंकि खुलकर जीना गुनाह है क्या? और सब प्रतिक्रियाओं के लिए मैं अपने को उत्तरदायी क्यों मानूं? जैसी मनः स्थिति को लेखक उस सच्चाई से सीधे क्यों नहीं जूझता जो एक बार मन को विश्वास दिलाना चाहता है कि विवाह एक संस्था है। संदर्भ एक, अनिल सारी, प्रतिपक्ष, 14 जनवरी 73, कॉमा, पृष्ठ संख्या 14, 2, परिवेश, पृष्ठ संख्या 180, 3, परिवेश, अनुभूति से अभिव्यक्ति तक, पृष्ठ संख्या 179, 4, सारिका, नवंबर 1968, व्यक्तिगत डायरी, पृष्ठ संख्या 64। पृष्ठ संख्या 88। सामाजिक नियम उस नियम को तोड़ने की बात सोचना उच्छृंखलता है, लेकिन उनका मन विद्रोह करके कहता है कि स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण, जो कि एक प्राकृतिक नियम का पालन है, सामाजिक दृष्टि से यदि नियम का उल्लंघन हो तो क्यों जीवन भर अपने आप को निषेध करके उस नियम की दासता को निभाया जाए। अशोक से राकेश ने कहलाया भी है कि जो चीज बरसों से एक जगह रुकी है वह रुकी ही नहीं रहनी चाहिए। सचमुच चाहता हूं कि बात किसी एक नतीजे पर पहुंच जाए, लेकिन जो होना चाहिए सामाजिक दृष्टि से संभवतः वह उचित नहीं है। सावित्री अंत में वापस लौटी दिखाई देती है, लेकिन बिन्नी कहती भी है, मुझे तेरी बातों से डर लगता है आजकल, पता नहीं सही भी नहीं लगती। हालांकि तो फिर आधे अधूरे में प्राकृतिक नियम का उल्लंघन क्यों? क्या केवल सामाजिक व्यवस्था के कारण? वस्तुतः यह क्या, हम इस स्थिति को स्वीकार करके इसे बदल नहीं सकते? लेकिन कैसे? राकेश के व्यक्तिगत जीवन और अनिश्चय और द्वंद्व इस नाटक में भी हैं। सावित्री ही दोषी नहीं हो सकती थी। सावित्री घर से हमेशा के लिए जा सकती थी। महेंद्र से उसका संबंध विच्छेद भी हो सकता था, लेकिन या तो लेखक अधूरेपन में आदमी की मानसिकता हताशा ही दिखाना चाहता था, या मध्यवर्गीय जीवन की कुंठा, निराशा, विवशता ही, क्योंकि आरंभ से अंत तक तनाव और निष्फल संघर्ष में जीना आज के आदमी की नियति तो है ही। सारी कोशिशों के बावजूद जहाँ के तहाँ बने रहना उनकी अनिवार्य स्थिति है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास में हरबंस और नीलिमा भी इसी अनिवार्य स्थिति में जीते हैं। ऊपरी कही गई ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस नाटक की सार्थकता और सृजनात्मकता फिर प्रश्न चिन्ह लगती है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि हिंदी नाटक और स्वयं राकेश की नाटक यात्रा में इसकी बड़ी अहमियत है। मानवीय संबंधों की नई और बड़ी सूक्ष्म पहचान न होते हुए भी जीवन का सत्य यथार्थ इसमें मौजूद है। इस नाटक की सबसे बड़ी खूबी है इसके ठोस जानदार संवाद। सही नाट्य भाषा की खोज और एक तेवर आक्रोश नाटक में बुना हुआ। आज की जिंदगी को आज के ही मुहावरे में पेश करने की सफल कोशिश। पहले वाक्य में ही नाटक का यह सौंदर्य सामने आ जाता है। समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सकने की शक्ति पहली बार इस नाटक के संवादों और भाषा में मिलती है, जो केवल बोलचाल की भाषा होने के कारण नहीं, शब्दों के चयन, उनके क्रम, संयोजन, ध्वनियों के कारण है, जो पात्रों के मनोविज्ञान को, तल्खी कड़वाहट को उसी तेवर के साथ व्यक्त करता है। नितांत सहज प्रभावशाली भाषा, जो अपने लिखित और उच्चरित दोनों रूपों में समान रूप से झकझोरने वाली है। ओम शिवपुरी इस नाटक की भाषा को ही वह मुख्य कारण मानते हैं, जिसके कारण यह नाट्य रचना बंद और खुले दोनों प्रकार से मंचों पर अपना सम्मोहन बनाए रख सकी। इस नाटक में हिंदी भाषा के जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक कोशिश ही हिंदी नाटक को कई कदम आगे ले जाती है। संदर्भ 1, नटरंग 21, पृष्ठ संख्या 20। पृष्ठ संख्या 89। जो महसूस कर रहा हूं उसे शब्दों में नहीं रख पाऊंगा, इसीलिए नहीं कि साहस नहीं है, बल्कि इसीलिए कि उसके लिए ठीक शब्द नहीं मिल पाएंगे। राकेश की सही शब्द के लिए यह तड़प और कोशिश ही भाषा में इतनी व्यंजना शक्ति, सांकेतिकता और जान ला पाई है। कथाकार कमलेश्वर ने कहा भी है कि उसके पास शब्द हैं और समय की सच्चाइयों को वह निर्मम होकर उन्हीं शब्दों से भेदता रहा है। उसने एक भी शब्द खाली नहीं जाने दिया। यही उसका सबसे बड़ा जुर्म है। यह जुर्म ही आधे अधूरे का सौंदर्य है। राकेश के अपने चिंतन से जन्मी भाषा उधार लिए गए शब्द नहीं, अनुभूत शब्द पूरे अर्थ से संपन्न, सजीव और एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए। इसीलिए संवाद अप्रतिम है। प्रत्येक संवाद जहाँ पात्रों के मानसिक अभाव, बेचैनी, त्रास, कुंठा और अधूरेपन को अभिव्यक्त करता है, वहाँ उनमें ऐसा उतार चढ़ाव भी है कि अभिनय की भंगिमाएं, व्यंग और तीव्रता उभरती चलती हैं। यह बात भी ध्यान देने की है कि जहाँ पहले दोनों नाटकों में संवादों के अतिरिक्त या साथ साथ पात्रों की गतियों को बहुत स्थान दिया गया था, वहाँ इस नाटक में संवादों की गति को ही ज्यादा महत्व दिया गया है। यह विकास का एक लक्षण है। केवल सिंघानिया और जुनेजा के संवादों में ठहराव है, क्योंकि ये पात्र, इनका स्वभाव, व्यक्तित्व ही ऐसा है। अन्यथा नाटक के संवादों में गति ही गति है, क्योंकि वह उन सभी पात्रों के मानसिक आक्रोश को अभिव्यक्त करने के लिए जरूरी है, और तीखेपन में तेजी और तलखी स्वाभाविक भी है। इसके अतिरिक्त कहीं संवाद अधूरे अस्फुट हैं, कहीं पूरे पूरे लंबे, कहीं एकदम छोटे, कहीं पृष्ठ भर एक ही व्यक्ति बोलता जाता है, कहीं दो पात्रों के संवादों में विरोधात्मक स्थितियां हैं, तो कहीं एक दूसरे से जुड़े फिसलते संवाद। नाटक के अनुकूल वातावरण की सृष्टि करने में संवादों के अलग-अलग रूप बड़े सहायक हुए हैं। बिन्नी के संवाद उसके आयु के अनुकूल टोन लिए हैं, तो किन्नी और अशोक अपनी अपनी आयु और स्वभाव के अनुरूप टोन में बोलते हैं, जबकि सावित्री बहुत भोगी हुई, बहुत अनुभवी स्त्री के टोन में बात करती है, और पुरुष कभी पत्नी निर्भर पति के टोन में तो कभी झल्लाहट में। जाहिर है कि संवादों को पात्रों के मनोभाव से, आंतरिक जगत से जोड़ा गया है, उनके बाह्य रूप, बाहरी व्यक्तित्व से नहीं। आपसी संबंध से अलग विद्रोही छोटी लड़की का टोन, भाषा बड़ी स्वाभाविक है। झूठ मूठ, मेरा फाउंटेन पेन तेरी वर्णा के पास नहीं है। वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियां चट खाता फिर फिरता है। इसी तरह बड़ी बहन से भी उसका बोलना चरित्र में आंतरिक पैठ का उदाहरण है। तुम मत बात करो, मिट्टी के लोंदे की तरह हिली ही नहीं यहां से जब मैंने डॉट डॉट। भाषा और टोन अंदर की तल्खी संबंधों के बिखराव का स्वाभाविक नमूना है। इसीलिए प्रायः कहा गया है कि आधे अधूरे संवादों में भाव की पूर्णता, अर्थ की सहज ग्राह्यता और पात्रानुकूलता का जवाब नहीं है। राकेश के संवादों में निरर्थक प्रसंग, अर्थहीन शब्द, वाक्य की गठन की शिथिलता, लड़खड़ाहट, अस्पष्टता कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वे कथा विकास से अधिक चरित्र से जुड़े हुए हैं, या समूचे रंगमंच से, रंग चेतना से। संदर्भ: एक, सारिका, कॉमा, अगस्त 1968, कॉमा, पृष्ठ संख्या 67।